समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
तू मेरा दिल, तू मेरी जान, सुन तू शैतान।
अज्ञात कहते हैं उनके होने से वक्त होते हैं बाप घर के दरख्त होते हैं। आज फादर्स डे मनाया जा रहा है, ये दिन पिता को समर्पित है जो हमें उनके प्यार, परिश्रम और त्याग के लिए उन्हें सम्मानित करने का मौका देता है। और आज फादर्स डे पर खूबसूरत खूबसूरत संदेश भेजकर अपने पापा को शुभकामनाएं दें और उनका आभार जरूर व्यक्त करें।
Absolutely. Namaskar, Adab, and a very warm welcome to Aaj Savere's Father's Day edition. और एक शेर हम भी अर्ज करना चाहेंगे फरहत, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने। सो माँ तो हमेशा कहते हैं क्रेडिट ले जाती है हर चीज का, बट बाप एक अनसंग हीरो कह सकते हैं फैमिली का, लेकिन इट्स दैट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ अ फैमिली। बिकॉज आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड फरहत, अगर आप मेरे ख्याल से इत्तेफाक रखेंगी इस बात से, कि अगर घर में फादर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो उस दिन किसी मदर का दिल नहीं चाहता खाना बनाने का।
जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं सारा देखा जाए कि अगर फादर के बिना की जाए तो बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिगड़ जरूर जाते हैं, क्योंकि जो एक उनका कह लीजिए हार्ड जो स्ट्रक्चर होता है वो जरूरी होता है बच्चों की परवरिश के लिए।
यस एब्सोल्युटली, सो बाप की मौजूदगी ऑफ कोर्स कोई नहीं भरपाई कर सकता।
सो आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि हमेशा जो बाप का साया है वो हर बच्चे के ऊपर बना रहे। और आज दिल्ली का भी मौसम सारा बारिश ने बहुत ही खुशनुमा कर दिया है, इसलिए थोड़ा समय निकालकर हम यही कहेंगे कि आज अपने पिताजी को समय दें और उनके साथ घूमने भी बाहर जरूर जाएं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लें हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा।
यस फरहत, एंड लेट्स स्टार्ट द शो विद द लेटेस्ट हेडलाइंस। और उसके अलावा तो सब लोग जानते ही हैं कि क्या कुछ लाते हैं हम अपने शो में। ऑफ कोर्स वी ब्रिंग यू एन अमलगमेशन ऑफ नॉट जस्ट न्यूज बट आल्सो न्यूज फ्रॉम योर वेरी ओन सिटी इन आवर मेट्रो न्यूज section. Apart from that, of course, we'll remember some of the personalities who either have their birth or death anniversaries or birthdays today. So a lot of that, but first let's start with the headlines, Farhad.
जी सायरा, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से जुड़ी खबर की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आज साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर श्री मोदी आज साइप्रस की राजधानी निकोसिया पहुंचेंगे। 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा होगी। निकोसिया में श्री मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडिस से वार्ता करेंगे। वे लिमासोल में व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने और भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा यूरोपीय संघ के साथ भारत की साझेदारी मजबूत करने में मदद मिलेगी। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर कल G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कानासिस पहुंचेंगे।
As the world prepares to mark the International Day of Yoga on June 21, Cyprus is already in celebration mode. From community events to coastal yoga sessions, the Mediterranean island is embracing India's ancient tradition with warmth and enthusiasm. Indian High Commissioner to Cyprus, Mr. Manish, says yoga has found a strong following in the country.
Yoga is a big thing here. Everybody likes to do yoga and follows yoga. It doesn't matter which school they follow, but yoga is quite popular here.
In the run-up to Yoga Day, the Indian High Commission has organized a series of programs across the country, reaching out to local institutions and enthusiasts.
This can be gauged from the fact that we launched the 10th anniversary of International Day of Yoga. We started celebrating various curtain raiser events in April. We reached out to various yoga schools. There is a yoga federation here. We launched a special catalog. I think till now we have done about 15-16 events.
The grand event this year will be held at one of Cyprus's most picturesque coastal venues and is expected to see participation from a wide cross-section of society.
And next Saturday, that is the 21st June, we will be celebrating a big event not very far from here. It is called Limassol Marina. There is a deck there facing the sea. So it would be a very interesting event. And we get full support, not only from Indian heritage people, but the common Cypriots and expats who are yoga lovers.
The High Commission says yoga has become a bridge between cultures, promoting not just health, but India's spiritual and cultural values.
कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज गंगटोक पहुंचेगा। सिक्किम सरकार ने श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सभी प्रबंध कर लिए हैं। ये यात्रा 5 वर्ष के अंतराल के बाद 20 जून से शुरू हो जाएगी। आकाशवाणी से बातचीत में पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के अपर सचिव सीएस राव ने बताया कि पहले जत्थे में सरकारी अधिकारियों सहित 35 यात्री हैं। ये यात्री स्वयं को मौसम के अनुकूल बनाने के लिए 4 दिन तक सेराथांग और 15वें मील स्टेशन पर रुकेंगे।
Tomorrow we are receiving around 35 yatris along with 2 liaison officers. They will be received by our State Tourism Development Corporation officials at Bagdogra so that they will come to Gangtok. As informed earlier, 5 days acclimatization formalities are there before crossing the border. First day they are going to stay in Gangtok. Then after that, second and third day, they are going to stay at 17th mile JN Road, where we have our own accommodation. That accommodation has been developed only for yatri purpose. Then last 2 days, they will be shifted to Saritang. That is almost in the border of China and India.
और सारा आज वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस भी है और ये दिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और उनकी उपेक्षा को रोकने के प्रति जागरूकता बढ़ाकर बेहतर समझ को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। और पंजाब से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हेल्पेज इंडिया के अध्ययन में पता चला है कि छोटे शहरों में युवा और बुजुर्ग पारंपरिक मूल्यों और अंतर पीढ़ीगत संबंधों को साझा करते हैं। 10 शहरों में किए गए सर्वेक्षण में कुल 5,788 उत्तरदाताओं में से 2/3 वरिष्ठ नागरिकों और 70% युवाओं ने बताया कि बातचीत से ही उनके बीच अच्छे संबंध हमेशा से स्थापित होते रहे हैं।
यह रिपोर्ट बताती है कि बुजुर्गों से निकटता के मामले में मेट्रो शहर और गैर मेट्रो शहर के युवाओं के बीच उल्लेखनीय अंतर है। गैर मेट्रो शहर वाले युवा अधिक पारंपरिक व समुदाय उन्मुख मूल्य प्रणालियों के कारण सम्मान की अधिक अभिव्यक्ति दिखाते हैं। हालांकि चुनौतियों के बावजूद बुजुर्ग और युवा दोनों ही इस बात पर दृढ़ आशा व्यक्त है कि उनमें आपसी समझ निश्चित रूप से रिश्ते बेहतर बना सकती है। वे काफी हद तक इस बात पर भी सहमत है कि एक साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिताना बेहतर बंधों को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावी तरीका है। हेल्पेज इंडिया के पंजाब और चंडीगढ़ के प्रमुख भवनेश्वर शर्मा कहते हैं कि रिपोर्ट एक उत्साहजनक पुष्टि और समय पर चेतावनी दोनों प्रदान करती है।
इस अध्ययन से पता चलता है कि बुजुर्गों के प्रति सम्मान और पारिवारिक संबंध भारत में गहराई से सम्मानित है, लेकिन इसके बावजूद कई बुजुर्ग भावनात्मक रूप से दूर, अनसुने या सार्थक जुड़ाव से अपने आप को अलग महसूस करते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि युवा भी बुढ़ापे के दौरान अकेलेपन, खराब स्वास्थ्य और वित्तीय असुरक्षा से डरते हैं और जैसा कि बुजुर्गों के मामले में होता है, वे भी बुढ़ापे में अपने परिवार के साथ रहने में विश्वास करते हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी आज ये दिन मना रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टोल फ्री एल्डर लाइन हेल्पलाइन नंबर 14567 जारी किया गया है।
Israel and Iran have escalated their deadly exchange of missile strikes as Iranian projectiles targeted major Israeli cities, while Israeli forces simultaneously conducted new attacks on military installations in Tehran yesterday. The dramatic confrontation has plunged the Middle East into what officials describe as dangerous new territory. More from our correspondent.
Air raid sirens wailed across Israel as missiles streaked through the skies over Jerusalem and Haifa. Israelis are rushed to bomb shelters in northern Israel as Iranian missiles rained down in populated areas. Loud explosions were heard through the Haifa region. The Israeli Defense Forces confirmed they are striking military targets in Tehran even as they work to intercept the wave of missiles launched from Iran. The IDF Homefront Command has instructed civilians nationwide to remain close to bomb shelters until further notice. Meanwhile, the United States President Donald Trump escalated diplomatic pressure on Tehran, warning that even more brutal attacks on Iran will follow if the Islamic Republic does not commit to a nuclear agreement with the United States. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
Meanwhile, the 6th round of nuclear negotiations between the United States and Iran, scheduled for today in Muscat, has been cancelled. Oman, which has been acting as a mediator, announced the cancellation following Israel's sweeping air offensive against Iran. that targeted nuclear facilities and killed several senior commanders and scientists. The talks aimed at resolving long-standing concerns over Iran's nuclear program were called off as regional tensions soared in the wake of the Israeli strikes and subsequent Iranian retaliation. And now moving on to the world of sports, India's Yajik Hilang won gold medal at the 15th South Asian Bodybuilding and Physique Sports Championships 2025 at Thimphu in Bhutan yesterday. We have more from our sports desk.
Yajik Hilang secured first position in the women's model physique up to 155 cm event. She hails from Arunachal Pradesh and has become the first female physique sports athlete from the state to win a gold medal at an international event. Organized by South Asian Bodybuilding and Physique Sports Federation, the 5-day championship will conclude today. Moving on to next update, the BCCI has decided to constitute a committee to formulate comprehensive guidelines aimed at preventing such incidents that occurred during the IPL victory celebrations of RCB in Bengaluru. The decision was taken during BCCI's 28th Apex Council meeting yesterday. The committee will be led by Devajit Sekia as chairperson, while it will also comprise of Prabhtej Singh Bhatia and Rajiv Shukla. This committee will formulate the guidelines within 15 days. In hockey, the Indian Junior Women's team continued its unbeaten run in the Europe Tour with a spirited 2-1 win over Australia in their fourth and penultimate match in Belgium. This win marks India's fourth consecutive triumph on the tour, following a clean sweep over Belgium in the opening three games. Chirag Jha, Sports Desk.
और श्रोताओं, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरों का. तो सारे सबसे पहले क्या है चेन्नई में खास?
Well, you have already told about the World Elder Abuse Awareness Day. So we have our first story in Chennai related to that. The Helpage India organization unveiled its national report on understanding intergenerational dynamics and perceptions on aging to mark the World Elder Abuse Awareness Day. Joint Director of the Social Welfare Department, Uma Devi, emphasized government efforts such as the Ambu Chalai Day Care Scheme, which promotes elder engagement and intergenerational bonding. She stressed the importance of reconnecting with grandparents, whom she called treasures of knowledge. The Deputy Commissioner of Police spoke about the Bandhan initiative, which supports elders with daily needs and safety. She said that installing safety buzzers in residential areas and establishing elder-friendly recreational clubs is also under that theme. The theme broadly analyzes the perceptions of 70% youth and 30% elders. It conveys that the youth feel the value of elders but are restrained from expressing it, while elders understand and appreciate the advanced younger generation but feel neglected by them. The study reiterates the need for engaging in open and respectful conversations as the most effective way to foster better connections. And it is so right, Farhad, because it is my personal observation also, because I grew up with a grandparent around me. So, jo bachchon ke grandparents aas paas rehte hain, unka you can say unki alag hi parvarish hoti hai. So they know how to treat elders, and there's always, they are afraid. Like, for example, if I talk about my own children, when my mother is around, or when, you know, my mother-in-law is around, then they have a different persona altogether. They know that अच्छा एक घर में बहुत बड़ा है, मम्मी की बात भले ही ना माने, उनकी बात मानना है.
मानना है. बल्कि देखा जाए तो 70 से ऊपर जो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं समय की जरूरत होती है. उन्हें लगता है कि कोई उनके पास आकर बैठे, उनसे बातें करे, क्योंकि वो एक बचपन जी रहे होते हैं. तो बचपन में जिस तरीके से बच्चों को जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से इस उम्र में जो है वो उन्हें हमारी जरूरत पड़ती है. बिल्कुल, ऐसे में हमें चाहिए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय दें, और सोशल नेटवर्किंग साइट, जितना हम लोग इंस्टाग्राम रील्स पर समय बिताते हैं, वो उनके साथ समय बिताएं.
दैट्स ट्रू. एंड इन फैक्ट, जैसे घर के बड़े बूढ़े कहते थे कि घर के बड़ों को कुछ नहीं चाहिए, बस दो बोल इज्जत और प्यार के ही चाहिए. सो आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स हैव ऑलरेडी सीन लाइफ, दे हैव गिवन द लाइफ टू अस दैट वी आर लिविंग टुडे. सो एट दिस जंक्चर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट सिट डाउन विद देम एंड लिसन टू देम. देयर वुड बी टाइम्स व्हेन दे वुड बी रेपिटेटिव बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, दे डोंट रिमेंबर मेनी थिंग्स. But nonetheless, just remember these were the hands that held your hand when you didn't know how to walk.
क्योंकि एक समय था जब बच्चे जो हैं दादी नानी की कहानियां सुनकर ही बड़े होते थे. और अब की जो न्यूक्लियर फैमिली जो हो गई है, तो उसमें बहुत सारी जो چیزیں ہیں وہ واقعی میں اب جو ہے مس کرتے ہیں.
ایبسولیوٹلی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ ایٹ لیسٹ دس ڈے ان ڈیٹر از اے ریمائنڈر ٹو ایوری ون. اینڈ وی اپیل ٹو آر لسنرز, اف کبھی کبھی مجبوری میں آپ کو نیوکلیئر فیملی میں رہنا پڑتا ہے, یو آر اوے فرام یو نو یو ڈفرنٹ سٹی, بٹ نن دا لیس پلیز ڈو ٹیک آؤٹ ٹائم سو دیٹ یور چلڈرن کین سی دیئر گرینڈ پیرنٹس اراؤنڈ. Moving on to our next city, Bengaluru. Run with the Wind Marathon was organized in Bengaluru yesterday as a prelude to the Global Wind Day that is being observed today. Karnataka Renewable Energy Development Limited, Indian Wind Power Association, had organized the marathon with support from the Union Ministry of New and Renewable Energy to raise awareness about the immense potential of wind energy and its transformative role in achieving a sustainable future. Over 500 runners from schools, colleges and also industry professionals, government employees and clean energy advocates participated in the 2,500 marathon carrying a message of greener and more sustainable Karnataka. Moving on to Hyderabad in Telangana, over 12,48,000 cases were settled in a single day during the National Lok Adalat held across the state yesterday, and compensation to the tune of 935 crore rupees was awarded to the beneficiaries. Organized under the Telangana State Legal Services Authority, TSLSA, the event covered both pre-litigation and pending court cases across all judicial districts and the High Court. Held under the leadership of Acting Chief Justice of Telangana High Court, Sujoy Paul, and Justice Abhinand Kumar Shaveli, the initiative saw the setting up of 319 Lok Adalat benches across the state, including at the High Court and Debt Recovery Tribunals. Out of them, 315 benches operated in judicial districts. Justice Paul inaugurated the event at the City Civil Court, Secunderabad, where he personally handed it over Lok Adalat awards to litigants who settled their cases amicably.
اور سائرا, اب دلی کی خبروں سے شروعات کر لیتے ہیں. راشٹریہ راجدھانی میں آج صبح تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش ہوئی. بارش سے دلی میں تاپمان میں کافی گراوٹ محسوس ہوئی اور لوگوں کو بھیشن گرمی سے راحت ملی. وایو گڑوتا میں سدھار ہوا ہے. وبھاگ کے انوسار صبح کے سمے راشٹریہ راجدھانی میں 80 سے 100 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے اور بارش کے کارن یاتایات بادھت ہوا اور کئی نچلے علاقوں میں جل بھراؤ کی بھی خبر ہے. اس بیچ موسم وبھاگ نے تمل ناڈو, تٹیہ کرناٹک, درکشن آندھری کرناٹک, کیرل, کونکن, گوا میں آج اتیادھک تیز ورشا ہونے کا ریڈ الرٹ بھی جاری کیا ہے. اس کے علاوہ ممبئی کا رخ کر لیتے ہیں. ممبئی کی وشیش کیندری انویشن بیورو عدالت نے نیٹ یو جی 2025 پریکشا سے جڑے گھوٹالے کے سلسلے میں دو ویکتیوں کی پولیس حراست کل تک بڑھا دی ہے. سی بی آئی نے دونوں ویکتیوں کو کتھت طور پر امیدواروں اور ان کے پریواروں کو دھوکہ دینے کے آروپ میں گرفتار کیا تھا. ان پر بڑی رقم کے بدلے پریکشا کے انکوں میں بدلاؤ کرنے کا آروپ ہے. वहीं मध्य रेलवे अनधिकृत यात्रा पर अंकुश लगाने और प्रथम श्रेणी के यात्रियों के आवागमन के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कल से उपनगरीय ट्रेनों के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में एक केंद्रित टिकट जांच अभियान शुरू करेगा. मध्य रेलवे ने कहा है कि उसके मुंबई डिवीजन ने प्रथम श्रेणी के डिब्बों में अनधिकृत यात्रा के बारे में लगातार मिल रही शिकायतों को दूर करने के लिए यह अभियान शुरू करने का फैसला किया है. वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विश्व आज भारत को न केवल एक प्रमुख गंतव्य देश के रूप में देख रहा है बल्कि एक ज्ञान भागीदार राष्ट्र के रूप में भी स्वीकार कर रहा है. वे महाराष्ट्र में 5 विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित करने के उद्देश्य से मुंबई में आयोजित आशय पत्र अनुदान समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र लंबे समय से औद्योगिक गतिविधियों तथा बुद्धिमत्ता में अग्रणी रहा है और यह अब शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रमुख राज्य बनकर उभरेगा. और अब कोलकाता का रुख कर लेते हैं. जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन और सियालदा के बीच संचार को आसान बनाने के लिए नई हमसफर एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है. इस ट्रेन में एसी कोच की सुविधा है. जलपाईगुड़ी के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने कल इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. इस अवसर पर भारतीय रेलवे के उच्च अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे. اور اب مہانگروں کے موسم کا رخ کر لیتے ہیں. تو سارا دلی کا تو ہم موسم بتا ہی چکے ہیں کہ صبح سے ہی بارش ہو رہی تھی اور دن بھر جو ہے وہ انمان رک رک کر بارش ہونے کا بھی ہے. ادھکتم تاپمان رہے گا 42 ڈگری سیلسیس اور نیوتم تاپمان 30 ڈگری سیلسیس کے آس پاس. ممبئی میں بادل چھائے رہیں گے, بارش کی سمبھاونا ہے. نیوتم تاپمان 27 ڈگری سیلسیس اور ادھکتم تاپمان 33 ڈگری سیلسیس رہے گا. کولکاتا میں آنشک روپ سے بادل چھائے رہیں گے اور نیوتم تاپمان 28 ڈگری سیلسیس اور ادھکتم تاپمان 37 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا.
And Farhat, if we talk about the cities down south, well, Chennai will have a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. Minimum temperature was 27, while maximum will be around 38 degrees Celsius. Bengaluru will also have a cloudy sky and some light rain is expected there. The minimum temperature was 21 degrees Celsius. Maximum will be around 28 degrees Celsius. Hyderabad will also have a cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature in Hyderabad will hover between a minimum of 23 and a maximum of 31 degrees Celsius. And well, show ke dauran hum log bata chuke hain listeners ko. Just once again, we are reiterating that today are three important days. Of course, today is Father's Day. Today is also Global Wind Day and World Elder Abuse Awareness Day. So it's very important, Farhat, that since Global Wind Day is observed annually on 15th of June, we know the power of wind energy in driving clean and sustainable growth. It was first promoted in the year 2007 by the European Wind Energy Association to raise awareness about the power of wind and its importance in the renewable energy sector. World Elder Abuse Awareness Day ke baare mein aapne Farhat kaafi bata hi diya hai. This day provides an opportunity for communities around the world to promote a better understanding of abuse and neglect of older people by raising awareness of the cultural, social, economic and demographic processes affecting elder abuse and neglect. And of course, we began our show with a lovely song dedicated to all the wonderful fathers over there. Father's Day is being observed today worldwide to celebrate fatherhood, paternal bonds and the influence of fathers in the society. This day is celebrated on the third Sunday of June in many countries, including India. And this year, it falls on 15th of June, which is today. The idea of Father's Day dates back to the early 20th century in the United States when Sonora Smart Dodd, who was a woman from Spokane, located in Washington, she wanted to have a day to honor her father, William Jackson Smart, as he raised six children alone after his wife passed away. So indeed, of course, all fathers need, lekin jo single fathers hai, unke to hats off. You know, single mothers, because mothers are natural caregivers, you can say. But if a father... That's true. And if we look back in history, Farhat, the importance of this day, well, we take our listeners back to the year 1389. The Battle of Kosovo was fought between the armies of the Serbian Prince Lazar and the forces of the Ottoman Sultan Murad I. And this concluded with the Ottoman victory.
Aur 1664 ki agar baat kare to America mein New Jersey ki sthapna aaj hi ke din ki gayi thi.
The first blood transfusion took place today in the year 1667. French physician Jean-Baptiste Denis, he performed the first blood transfusion on a feverish boy using lamb's blood. The boy recovered, but two other patients died from the procedure, leading to centuries-long bans on transfusions. But today we all know that they are very much an inherent part in the medical fraternity. In fact, kal hum log ne blood donor day bhi banaya tha, so it's very important that we remember the importance of blood transfusions and donating blood. Also on this day in 1844, Charles Goodyear received a patent for the process of rubber vulcanization. And we all know that Goodyear ke tires to aaj bhi mashhoor hi hai, isn't it? On this day in 1846, the US and Britain signed the Oregon Treaty, establishing the border between Canada and the US at latitude 49 degrees north.
वहीं 1762 की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया में कागजी मुद्रा का चलन शुरू हुआ. 1908 में कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत हुई और 1988 में नासा ने स्पेस व्हीकल S-213 लॉन्च किया.
On this day in 1878, the first successful series of photographs of motion were captured by May Bridge at Stanford's Palo Alto Stock Farm. These photographs were known as the horse in motion.
और सन 2010 में भूटान तंबाकू में पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना.
And if we talk about the year 1908, well, the Calcutta Stock Exchange was established on this day. It was one of the Asia's oldest stock exchanges and second oldest in India. Also, in the year 1917, 2 months after America's formal entry into the First World War against Germany, the United States Congress passed the Espionage Act. And on this day in 1947, the Mountbatten Plan, which outlined the partition of India, was accepted by the Congress.
और अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी हस्तियों को. सबसे पहले हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका सुरैया को. 40वें और 50वें दशक में इन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना योगदान दिया. अदाओं में नजाकत, गायकी में नफासत की मलिका सुरैया जमाल शेख ने अपने हुस्न और हुनर से हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई नई इबारत लिखी.
That's true. In fact, Suraiya was regarded as one of the greatest and finest actresses in the history of Indian cinema. In fact, wo khoobsurat to thi, uske alawa khoobsurat awaaz ki bhi malkin thi, you can say. And she was, therefore, she mostly sang her own songs, and that's why she was often regarded as the singing superstar.
Ji.
She acted in over 70 films and sang 338 songs.
Ji, bilkul, Saira. Aur Suraiya ki filmi career ki shuruaat bhi bade rochak tarike se hui. गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली. वहीं 1941 में स्कूल की छुट्टियों के दौरान जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गई तो निर्देशक नानू भाई वकील की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नजर में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया था.
That's right. In fact, she also started her singing career at a very young age. She sang her first song for the film Nai Dunya in the year 1942 when she was only 12 years old.
और इसी तरह के संगीतकार नौशाद की अगर बात करें तो उन्हें पहली बार आकाशवाणी में जो है वो सुना था उन्होंने और उसके बाद उन्होंने फिल्म शारदा में सुरैया को गवाया.
That's true. And in her heyday, Suraiya was known as Malika-e Husn or the Queen of Beauty and Malika-e Adhikari, the Queen of Acting. And her final film release was Rustam Sohrab in the year 1963, after which she took retirement due to poor health. She received the Screen Lifetime Achievement Award in the year 1996 for her contribution to Indian cinema. And when Suraiya ki baat aati hai, to Mirza Ghalib film ke gaane apne aap hi gunjne lagte hain zehen mein. Why not listen to this beautiful song? Picturized on Suraiya and sung by her.
Nukta ji hai ghame dil usko sunaye na bane usko sunaye na bane
kya bane. Aur ab hum yaad kar rahe hain bhartiya hindi cinema ke prasiddh sangeetkar Sajjad Hussain ko. अरबी शैली के संगीत के टुकड़ों से अपनी धुनें सजाने में माहिर सज्जाद हुसैन ने ऐसे ढेरों प्रयोग मौलिक तरह से इजाद किए. ठीक उसी समय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के व्याकरण से चुनकर राग रागनियों के स्वरों का इस्तेमाल भी उनका पसंदीदा काम रहा. वे इस मामले में लीक से हटे हुए संगीतकार रहे जिन्होंने अपने समकालीनों की राह से दूरी बरतते हुए कुछ तिरछा रास्ता पकड़ा. हिंदी में जिस तरह शमशेर बहादुर सिंह और शास्त्रीय संगीत में उस्ताद अमीर खान साहब का मार्ग रहा, सन 1937 में सज्जाद हुसैन ने फिल्म संगीतकार के रूप में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और फिर छा गए.
That's right. He was also an accomplished mandolinist, playing the mandolin as a top great player for the Indian film industry in Mumbai for more than 5 decades. Reputed to have played more than 22,000 songs, including title songs and background music. Besides the music for movies, he was known to play Indian classical music or Hindustani, as well as Arabic music and Sufi music. Let's listen to a beautiful number composed by Sajjad Hussain.
ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा बेमिसाल है. ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा बेमिसाल है. मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुल्फ़ों में बहार है. ये हवा ये रात ये चांद.
और आज भारत के मशहूर ध्रुपद गायक जिया फरीदुद्दीन डागर का भी जन्म हुआ था. शानदार ध्रुपदिया गायक उस्ताद जियाउद्दीन डागर के बेटे फरीदुद्दीन ने अपने दिवंगत भाई जिया मोहिउद्दीन डागर के साथ मिलकर ध्रुपद शैली के गायन को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई. उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर उस परिवार से हैं जिसने 19 पीढ़ियों तक ध्रुपद गायकी को आगे बढ़ाया.
Thank you.
और इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा और आज फादर्स डे भी है तो एक बार फिर से आप सभी को फादर्स डे की शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आप आज का दिन जो है वो अपने फादर्स के साथ मनाएंगे और उन्हें खुश करेंगे और जो अपने फादर्स के साथ नहीं है उन्हें अच्छे अच्छे संदेश भेजकर जो है वो उनसे वार्तालाप साझा करेंगे।
That's right. Thanks for tuning in, listeners. Have a great day ahead. Namaskar. Namaskar.